ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। श्री मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सखी के रूप में स्व सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन करने से पहले प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती देखेंगे। कल श्री मोदी बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार मणिपुर के सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मणिपुर में सुरक्षा के हालात की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द से जल्द मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात करेगा, ताकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद दूर किए जा सकें। उन्होंने मणिपुर में सुख शांति बहाल करने के लिए रणनीतिक तौर पर केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि की जाएगी। गृहमंत्री ने राहत शिविरों की स्थिति, विशेष रूप से भोजन, पानी, दवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उचित उपलब्धता के संबंध में भी समीक्षा की। श्री शाह ने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने और उनके पुनर्वास का निर्देश दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीनगर के राजभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को भविष्य में मजबूत और गौरवशाली बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे की विशाल परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर का सृजन हुआ है और इससे वहां की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिला है। देश का समूचा उत्तरी भाग भीषण गर्मी के चपेट में है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि भयंकर गर्मी का प्रकोप आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिन के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के हालात अनुकूल हैं। इस बीच दिल्ली में आज के लिए भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिन के समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भारत की अंकिता रैना इटली के गैबा में वेनेचो ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। रैना ने चेक गणराज्य की डोमिनिका सालेकोवा को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से पराजित किया। आईसीसी के पुरुषों के 2020 क्रिकेट विश्वकप में सुपर 8 की टीमें तय हो गई हैं। नेपाल पर विजय हासिल कर बांग्लादेश इस दौरे के लिए चुनी जाने वाली अंतिम टीम बन गई। सुपर 8 के मुकाबले 19 जून से शुरू होंगे और 25 जून तक खेले जाएंगे। सुपर 8 का पहला मैच कल अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। वहीं भारत का इस चरण में पहला मुकाबला अफगानिस्तान से 20 जून को होगा। सभी मैच वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। 29 जून को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।